अनामिका ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, देखो मैं जानती हूँ कि तुम किन चीज़ों से गुजर रही हो, लेकिन तुम्हें अब खुद को मूव ऑन करना होगा। तुम कोई कमज़ोर लड़की नहीं हो यार कि हर वक्त बैठकर रोती रहो। तुम्हारे सामने तुम्हारी सौतेली बहन की तुम्हारे एक्स हस्बैंड से शादी हो रही है, तो तुम्हें इस तरह से रिएक्ट करने का कोई हक नहीं है। और वैसे भी आदित्य बहुत डिसेंट बंदा है यार, और उसने तुम्हें दिल से अपनाया है। मुझे नहीं लगता कि उसके साथ तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीनी चाहिए और अपने आप को एक मौका देना चाहिए। हम सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी ही तो देखना चाहते हैं। झलक ने थोड़ा शांत होकर कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसे पूरे दिल से अपनाऊं, लेकिन इसका ये क्या मतलब है कि तुम सामने वाला कमरा ही खाली कर दो? ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? अनामिका शरारती मुस्कान के साथ बोली, अरे यार, जवान हो, खूबसूरत हो और कौन जाने कब तुम्हारा रोमांस शुरू हो जाए। मैं तो चाहती हूँ कि तुम जल्दी से और ज़्यादा बदल जाओ और आदित्य में पूरी तरह खो जाओ। अनामिका, झलक गुस्से में उसे पकड़ने दौड़ी। अनामिका तुरंत हंसते हुए भागी और बोली, तुम चाहोगी तो भी मुझे पकड़ नहीं सकती। अब झलक गुस्से से उसके पीछे दौड़ रही थी और अनामिका कभी दादाजी के पीछे छुप जाती तो कभी बाकी लोगों के पास। उसी वक्त सभी लोग नाश्ता करने के बाद हॉल में ही बैठे हुए थे। भागते भागते अनामिका सीधे कबीर से टकरा गई। कबीर ने तुरंत अनामिका को गिरने से पहले अपनी बाहों में थाम लिया, लेकिन अगले ही पल उसने उसे हल्के से छोड़ दिया और पास में पड़े टिश्यू उठाकर अपने हाथ साफ करने लगा। ये देखकर सभी के चेहरे हैरानी से भर गए। झलक ने भी ये चीज़ नोटिस कर ली थी। वहीं अनामिका गुस्से से आग बबूला हो गई और तुरंत अपने कमरे में चली गई। कबीर को तो समझ ही नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कर दिया। झलक जल्दी से अनामिका के पीछे पीछे जाने लगी, क्योंकि उसका मूड सभी ने नोटिस कर लिया था। वहीं कबीर हैरानी से अपने कंधे उचकाकर आदित्य को देखने लगा। आदित्य ने उसे इशारा किया और कुछ ही देर में वो तीनों एक कमरे में इकट्ठा थे। अब आदित्य गुस्से से कबीर को देखने लगा। कबीर ने हैरानी से कहा, क्या हुआ भाई, तू मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया हो? आखिर मैंने किया क्या है? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कबीर की बात सुनकर अभय ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और आदित्य की ओर देखकर बोला, देख भाई, इस उल्लू ने इतनी बड़ी गलती की है और ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। कबीर भोलेपन से बोला, सच में यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया है। सब लोग हंसी खुशी बैठे थे, फिर अचानक अनामिका जी गिर गईं, मैंने उन्हें संभाला, फिर वो अपने कमरे में चली गईं, मैंने क्या गलत कर दिया? ये सुनकर अभय ने तुरंत उसके सामने हाथ जोड़ लिए, भाई तू तो रहने दे, अपना दिमाग बिल्कुल मत चला, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे चक्कर में हम ही पागल हो जाएं, हम तेरी कोई बकवास नहीं सुनना चाहते। अब इस तरह की बातें सुनकर कबीर और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैंने गलती क्या की है, तुम लोग मुझे इस तरह क्यों डांट रहे हो? आखिर हुआ क्या है ये तो बताओ। अभय ने फिर सिर पकड़ते हुए कहा, सीरियसली, तुझे सच में नहीं पता तूने क्या किया? कबीर ने अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए कहा, मैंने उसे संभाला, फिर मैंने टिश्यू से हाथ साफ किए। जैसे ही कबीर ने अपने दिमाग पर जोर डाला, उसे अचानक बात समझ आने लगी। वो थोड़ा झेंपते हुए बोला, अरे मैं तो इतने सालों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, इसलिए जब भी कोई लड़की पास आती है तो मैं तुरंत दूरी बना लेता हूँ, और यहाँ तो अनामिका जी सीधे मुझसे टकरा गई थी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं बस। उसी वक्त झलक, जो अनामिका के पीछे जा रही थी, दरवाजे के पास रुक गई। उसने कबीर की सारी बातें सुन ली थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो वापस मुड़कर जाने लगी। उधर अभय ने कबीर को घूरते हुए कहा, यार सच में तेरे जैसा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा, इतनी खूबसूरत लड़की तेरे सामने थी और तूने सब गुड़गोबर कर दिया, वो क्या सोच रही होगी कि तू कोई अजीब टाइप का इंसान है? इतना कहकर अभय वहां से निकल गया। फिर जाते जाते वो अचानक रुका, मुड़ा और कबीर को देखकर बोला, एक बात बताऊं, तूने तो साबित कर दिया कि तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यार सच बताऊं, मुझे वो बेहद खूबसूरत लगी और तू मुझे जानता है, मैं अपने चांस कभी मिस नहीं करता। अब तेरी हरकत के बाद तो मैं सच में उसे अपनी लाइफ में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये बोलकर अभय वहां से चला गया। वहीं अब कबीर ने आदित्य को देखते हुए कहा, क्या भाई, क्या तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो? कबीर की बात सुनकर आदित्य के भौहें चढ़ गए और वो बोला, तू एक काम कर, अनामिका से माफी मांग ले। आदित्य की बात सुनकर कबीर इरिटेट होते हुए बोला, माफी किस बात की मांगू यार, मेरी कोई गलती ही नहीं है। वहीं आदित्य मन ही मन सोच रहा था, मैं यहाँ अपनी झनक के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिताने के लिए आया था, लेकिन लगता है ये दोनों पागल मुझे अपनी ही बातों में उलझा कर रखेंगे और झलक से मिलने तक नहीं देंगे। इधर झलक अनामिका के कमरे का दरवाजा खटखटाया ही थी, लेकिन अनामिका ने दरवाजा नहीं खोला। अब झलक तैश में आकर बोली, मैं तुम्हें कुछ सेकंड का वक्त दे रही हूँ, अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगी। अनामिका समझ गई कि अगर उसने 10 सेकंड में दरवाजा नहीं खोला तो पक्का झलक अपने गुस्से में दरवाजा तोड़ देगी। वो जल्दी से गई और दरवाजा खोल दिया। झलक सीधा अंदर चली गई और अनामिका की लाल आंखों और टमाटर जैसी लाल नाक को देखकर बोली, क्या हुआ,
इतना क्यों रो रही हो? अनामिका ने जल्दी से अपना चेहरा पोंछते हुए कहा। तुमने देखा नहीं उसने मेरे साथ कैसा बिहेव किया? ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझे छू लिया तो कोई गुनाह हो गया हो, इसलिए उसने तुरंत अपने हाथ साफ करने शुरू कर दिए। तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अनामिका की आवाज़ भर्रा गई। ये सुनकर झलक को थोड़ी देर पहले सुनी हुई सारी बातें याद आ गईं जो उसने कबीर और बाकी लोगों के बीच सुनी थी। उसने वो सारी बातें अनामिका को समझा दी। अनामिका ने थोड़ा शांत होकर कहा, मतलब वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था? झलक बोली, मुझे किसी का दिल रखना नहीं आता, मैं बस सच बता रही हूँ। ये सुनकर अनामिका ने झलक को गले लगा लिया और बोली, अब देखना इस बाल ब्रह्मचारी के तेवर में कैसे बदलवाती हूँ। ये कहकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। वहीं दूसरी ओर कबीर को अब काफी बुरा लग रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके ऐसे व्यवहार से अनामिका को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ा था कि वो अनामिका से माफी नहीं मांगेगा। वो ऐसा ही था, अगर गलती से भी किसी लड़की को छू लेता तो तुरंत अपने हाथ साफ करने लगता था। आज भी उसने वही किया था, पर अब उसे एहसास हो रहा था कि सामने वाला इसे गलत भी समझ सकता है। कुछ देर बाद उसने सोचा कि उसे एक बार जाकर अनामिका से बात करनी चाहिए, लेकिन माफी तो वो फिर भी नहीं मांगेगा। कहीं ना कहीं उसे ये भी लग रहा था कि अगर वो ज्यादा झुका तो आदित्य और अभय उसे और चिढ़ाएंगे। फिर उसने सोचा, हम यहाँ मुंबई घूमने आए हैं, इतने सारे प्लान हैं, और बिना अनामिका और झलक के तो मजा ही नहीं आएगा। ये सोचकर कबीर जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकला, लेकिन तभी उसने देखा झलक और अनामिका सामने से आ रही थी। कबीर ने सोचा, अच्छा है यहीं बात कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही वो उनके सामने आया अनामिका उसे देखकर भी साइड से निकल गई। झलक ने भी उसे देखा लेकिन जानबूझकर उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। कबीर वहीं खड़ा का खड़ा रह गया हैरान। उसी वक्त आदित्य और अभय भी कमरे से बाहर निकल आए। आदित्य ने कबीर को कन्फ्यूजन में देखते हुए पूछा, क्या बात है, तू उस तरफ क्या देख रहा है? कबीर अभी भी उसी दिशा में देख रहा था जहाँ से झलक और अनामिका गई थी।
अभय के पूछने पर वो होश में आया और बोला, यार मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। ये सुनकर आदित्य और अभय ने एक दूसरे को देखा और फिर बोले, हाँ गड़बड़ तो हमें भी लग रही है, लेकिन तुझ में, तेरे साथ ही कुछ प्रॉब्लम है। अब यहाँ खड़ा मत रह, चल हमारे साथ, दादाजी ने सबको नीचे बुलाया है। ये सुनकर कबीर, जो उन्हें अनामिका के बिहेवियर के बारे में बताना चाहता था, चुप हो गया। उसने सोचा, नीचे जाकर देखता हूँ, हो सकता है वो लोग जल्दी में हों, इसीलिए उन्होंने मुझे इग्नोर किया हो। ये सोचकर वो भी नीचे चला गया। वहीं दूसरी ओर आकांक्षा सिद्धार्थ को एक मिनट के लिए भी अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो पूरी तरह से सिद्धार्थ में खोई हुई थी और मन ही मन सोच रही थी, तुझे क्या लगा झलक, तू ड्रामा करके सब कुछ बर्बाद कर देगी, लेकिन देख तेरी ही चाल के बाद मेरी शादी सिद्धार्थ से हो रही है, अब तू चाहकर भी इसे रोक नहीं पाएगी। उधर उर्वशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पल भर के लिए तो वो सिद्धार्थ की बातें सुनकर शांत हो गई थी, लेकिन उसके मन में सवाल चल रहे थे, क्या सच में सिद्धार्थ खुराना इतनी बदनामी के बाद भी आकांक्षा से शादी करना चाहता है? वहीं रणविजय की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो सिद्धार्थ से नजरें मिला सके। दादी और सिद्धार्थ एक साथ बैठे हुए थे और आकांक्षा भी उसके बिल्कुल पास बैठी थी, जैसे एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं होने देना चाहती थी। और तभी